क्योंकि ऐसे मनोरथ से मतलब व्यर्थ मनोरथों से उनका हृदय आकुल रहता है। मनुष्य जगत में सुख से रह सकता है यदि उसके हृदय में मनोरथ की तरंगे न उठे, न सोचते न कांक्षति कांक्षति। यदि मनोरथ न हो तो मनुष्य कहीं भी सुख से रहेगा, और जहां एक भी मनोरथ आ जाता है तो हृदय को आकुल कर देता है और वो कभी पूरा होगा नहीं। मान लीजिए कभी पूरा हुआ तो अनेक मनोरथ को जन्म दे करके पूरा होगा, उसको काम कहते। एक इच्छा पूरी हुई तो उसके साथ अनंत इच्छाएं उग जाएंगी, इसीलिए इसको अघट मान मनोरथ का। मनोरथ कभी पूरा नहीं होता है। मनोरथ का अर्थ होता है मन के रथ पर घूमना। हम लोग तो यहां बैठे हैं, जब जहां कहीं जाना होगा तो कार से जाएंगे, रिक्शा से जाएंगे, ट्रेन से, लेकिन हम मन के रथ पर कहीं भी घूम आते हैं तो मनोरथ करते, मन रथ मनोरथ। और आदमी मनोरथ करता रहता है, अभिलाषा करता रहता है, ये हो ये हो। इस तरह आकुल हृदय था। और राजर्षि भरत के लिए कह रहे सह योग ताप सह, योग ताप सह, योग के लिए कृष्ण से प्रेम बढ़ाने के लिए तपस्वी बने थे। ऐसा नहीं था कि घर के दुख से उब करके योगी बन गए थे, तापस बन गए थे। योग तपस्या कार थे, योग के लिए भक्ति के लिए तापस बने थे, तपस्या स्वीकार किए थे, भगवत उपासना कर रहे थे, मतलब उपवास कर रहे थे, तीर्थ में वास कर रहे थे, भूमि पर शयन कर रहे थे, फलाहार करते थे, देह को सुखा रहे थे, तपस्या कर रहे थे। किस लिए? कि भगवान में प्रेम बढ़े और बढ़ा भी था, इसको योग तापसा कहते। तो ऐसा योग तापस जो भक्ति के लिए तपस्या स्वीकार किया था, इतना ऊंचा उठा था, लेकिन मृगदारका भाषे में स्वार्थ कर्मणा, मृग बालक के रूप में प्रकाशित अपने सुंदर प्रारब्ध कर्म के द्वारा ऐसा गिर गया। ये ध्यान देने लायक शब्द है, सो आरब्ध कर्मणा। इसकी टीका करते हैं आचार्यगण। सबसे पहले साधारण अर्थ तो ऐसा लगेगा कि स्व आरब्ध कर्मणा, अपने प्रारब्ध कर्म से गिरे, एक अर्थ ये होगा। स्व आरब्ध मतलब प्रारब्ध कर्मणा, अपने प्रारब्ध कर्म से गिरे। लेकिन चक्रवर्ती पाजी अर्थ करते हैं सु आरब्ध कर्मणा। सु आरब्ध जैसे स्वागतम है, स्वागतम में स्व आगतम नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं हुआ कि आप अपने से आए हैं। स्वागतम सुआगतम का अर्थ है कि आपका आना बहुत अच्छा है, अच्छा है, हमको आपका स्वागत, आप बहुत, आपका आना बहुत अच्छा है, तो सु लगेगा उसमें, सु मैंने बहुत अच्छा। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं यहां पर सुन प्रारब्धो ही द्विविधम, दो प्रकार का प्रारब्ध होता है, शोभनम अशोभनम च, एक सुंदर प्रारब्ध और एक अशोभन असुंदर प्रारब्ध। तत्र आद्यम, इसमें जो सुंदर प्रारब्ध है वह वास्तव में जीव का कर्म फल नहीं होता है, प्रारब्ध नहीं होता है, लेकिन भक्ति प्रिय भगवता, भक्ति से प्रेम करने वाले भगवान भक्त की उत्कंठा बढ़ाने के लिए, स्वभक्ति उत्कंठा वर्धन विदग्धेन भगवता एव स्वेच्छा एव, भगवान अपनी इच्छा से भक्त का प्रेम बढ़ाने के लिए कभी कभी उसको गिरा देते हैं, उसको गिरा देते हैं। जैसे आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए तीव्र अंजन का प्रयोग किया जाता है, नयन त्रिवांजन दान न्याय न कहते हैं, स्वाभाविक भगवान करते हैं, गिरा देते हैं जिससे उत्कंठा बढ़े। और जब भगवान गिराते हैं किसी को तो उसका उसकी एक पहचान है, उसकी पहचान यह है कि गिरने के बाद भगवान में प्रेम और अधिक बढ़ जाता है बाद में, ये उसकी पहचान है। तो राजर्षि भरत का प्रेम कृष्ण के प्रति भरत देह में जितना था उससे कई गुना अधिक हरिण देह में हो गया था। और किसी अपराध से यदि उनका पतन हुआ होता है तो अपराध का फल होता है विषयाभिनिवेश। यदि अपराध से उनका पतन हुआ होता तो अपराध के कारण वो अब अपने बच्चों के पास जाते हैं, अपनी पत्नी के पास जाते हैं, हरिण में आसक्त नहीं होते। विषय का अभिनेश उनको होता है कि मैं बेकार बन में मर रहा हूँ, चलो अब सुख से रहे। हमारे बच्चे हैं ही एक एक नहीं, पांच पांच हैं, हमारी पत्नियां हैं, हम रहे सुख में। हमारी पत्नी है, मैं भूल किया, एक ही पत्नी थी, तो हम सुख से रहेंगे। तो समझिए, अपने कर्म फल से, अपराध से जब पतन होता है तो अपराध का फल भी अपराध होता है। अपराध का फल भगवत भक्ति में उत्कर्ष नहीं हो सकता है। इसलिए देखा जाता है जो लोग अपराध करते हैं तो उनके अपराध वृक्ष में और फल लगता जाता है। अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध, जब तक वो क्षमा नहीं कराते हैं तब तक वो अपराध ही करते जाते हैं। जैसे दक्ष प्रजापति, भगवान शिव का अपराध किए, फिर नारद जी का अपराध किए, बाद में वे शुद्ध हुए। तो इस तरह ये जो राजर्षि भरत का पतन हुआ वह किसी अपराध के कारण नहीं हुआ। चक्रवर्ती पाजी कहते हैं ये शोभन प्रारब्ध है, भगवान की इच्छा से हुआ, इसीलिए उनकी भक्ति बढ़ी। लेकिन वह भगवान के द्वारा भेजा हुआ प्रारब्ध कर्म किस रूप में आया? मृगदारक आभास से। आभास माने प्रकाश, हरिण बालक के रूप में प्रकट हुआ। जब जप कर रहे थे तो भगवान के द्वारा सुंदर प्रारब्ध उनके आंखों के सामने प्रकट कर दिया गया। यह कोई इनके बुरे कर्म का फल नहीं था कि वो हरिण आकर के वहीं गिर पड़ा, यह सिंह गरज दिया। कुछ टीकाकार तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण गरजे थे, नृसिंह गरजा, और कोई दूसरा नहीं गरजा। वो गरज दिए और हरिण छलांग मारी और बच्चा इनके सामने गिरा, यह भगवान की व्यवस्था थी। लेकिन सावधान रहना चाहिए, जब आचार्यगण टीका लिखते हैं तो वहां पर दोनों बात लिखते हैं, अपने प्रारब्ध कर्म से और सुंदर प्रारब्ध कर्म से। तो अपने प्रारब्ध कर्म से इसलिए बात लिखी जाती है कि हमें अपराधों से बचना चाहिए। हमें ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि हमको भी भगवान गिराती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कि अपराध से गिरे। और वास्तव में शास्त्र की व्याख्या सत्यम शिवम सुंदरम होनी चाहिए, केवल सत्य नहीं उसे शिवम और सुंदरम होना चाहिए, उसके द्वारा कल्याण होना चाहिए। तो यदि हम ये कहते हैं कि वह अपराध से गिरे थे तो यह कल्याण करने वाली बात है, अन्य लोगों की रक्षा करेगी, ये शिवम है, ये सुंदर बात है। सत्य बात यह है कि भगवान की इच्छा से गिरे थे। लेकिन यह नियम है कि जो भी बात बोली जाए तो वो सत्यम शिवम सुंदरम होनी चाहिए, कल्याण करे जनता। लेकिन कभी कभी लोगों के मन में शंका उठती है, ऐसा क्यों हो गया? उसका समाधान है, आचार्य लोग देश काल के अनुसार हित करने के लिए बोलते हैं। नहीं तो राजर्षि भरत का देखा देखी आदमी कहेगा, गिरेगा अपने मन से, अपने पाप से, और कह देगा भगवान हमारी भक्ति को बढ़ाना चाहते हैं इसलिए गिरा। जब बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़नी चाहिए। इसलिए दोनों बात ठीक है। तो वह सुंदर प्रारब्ध है, हरिण बालक के रूप में आया और इस तरह से वे अपने योगारंभ भरता दिभ्रंसित, अपने योग साधना से, भक्ति योग साधना से विशेष रूपेण भ्रंसित एकदम गिर गए। भगवत आराधन लक्षण। अच्छा, अब और क्लियर कर रहे हैं किस योग से गिर गए। योग तो बहुत प्रकार का है, तो कहते हैं भगवत आराधन लक्षणत योग है, भगवान की आराधना रूपी योग से गिर गए, भगवान की भक्ति से गिर गए। ये योग से गिर गए इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरा योग कर रहे थे। आजकल तो कहीं भी व्यायामशाला में कुछ एक्सरसाइज कर लिए, आसन कर लिए, सीधा खड़ा हो गए, कहते हम योगा क्लास में जाते हैं, इसको योग नहीं कहते हैं। वो कुछ हठ योग हो सकता है अथवा एक्सरसाइज व्यायाम है, वो योग नहीं है। योग का अर्थ होता है भक्ति योग। तो भगवत आराधन लक्षणात् योगारम्भत विभ्रंसित, इसमें च शब्द दिया गया है। संस्कृत में कहीं कहीं शब्दों का बहुत विशिष्ट अर्थ होता है, च का जनरली अर्थ होता है और, लेकिन यहां पर अर्थ होगा अपि भी। क्यों यह अर्थ होगा? श्री रजीव गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि भक्ति योग से कोई कभी गिरता नहीं है, लेकिन यहां लिखा गया है कि भगवत आराधन लक्षणा योगारंभरत अपि विभ्रंसित, उससे भी गिर गए, भी अर्थ में लेना पड़ेगा और अर्थ में नहीं, भक्ति योग से भी गिर गए। यह पहला लक्षण है, यह है कि भगवान ने गिराया है, क्योंकि इतना ऊंचा चढ़कर के भक्ति में कोई गिरता नहीं, ये भक्ति योग से भी गिर गए, ये अर्थ है। बहुत सूक्ष्म नियम है संस्कृत के अर्थ को समझने के लिए। चक्रवर्ती पाद जी ने लिखे हैं कि प्रायः भक्ति योग से कोई गिरता नहीं है, लेकिन फिर भी वे इतना ऊंचा चढ़कर गिर गए। क्यों? सुआरब्ध कर्मणा, भगवान के द्वारा प्रेरित सुंदर प्रारब्ध से गिर, यह गिरना इनके भक्ति को बढ़ाया, इसलिए इसको सुंदर प्रारब्ध कहा जा रहा है। जब भक्ति बढ़े जिसके गिरने से तो वो अच्छा है, इसलिए अपि शब्द में लेना चाहिए भी। इतर था, अब सुखदेव गोस्वामी के सामने मान लीजिए कोई कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि भगवान की इच्छा होगी गिरने की, तो वो स्वयं ही तर्क दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित की सभा में। इतर था, इतर था का अर्थ अन्य था, यदि सुंदर प्रारब्ध नहीं होता, यदि भगवान ने इनको नहीं गिराया होता, तो कैसे जात्यंतर में इनका आसंग हो सकता था, मनुष्य से भिन्न पशु में कैसे आसक्ति हो सकती थी? पहला कोई सोचे, कोई पशु में किसी की आसक्ति हो सकती थी? और उस व्यक्ति की जो साक्षात निःश्रेयस प्रतिपक्षतया प्राक परित्यक्ष दुस्ते हृदय भी जा सकते, अपने भक्ति में विरोधी जान करके, बाधक जान करके, श्रेयस में प्रतिपक्ष के रूप में जान करके, जिन्होंने अपने हृदय से जन्मे हुए पुत्रों को त्याग दिया था। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं पुत्र जो होता है वो पिता का प्रतिनिधि होता है, और वास्तव में वो हृदय से जन्मा होता है, प्रेम होगा तो उसके प्रति होगा, वो स्वाभाविक है, अथवा कम से कम मनुष्य का प्रेम मनुष्य से होगा, स्वाभाविक है। सवर्गे परमा प्रीति, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, यह देखा गया, पक्षी पक्षी से प्रेम करता है, पशु पशु से प्रेम करता है, एक पशु किसी को चाटता है तो दूसरा पशु भी उसको चाटता है, ये स्वाभाविक है। तो ये कारण जात्यंतर है एड़ कुण के, एक तो उनकी आसक्ति हुई जात्यंतर में, मन मानसेतर जीव में, हरिण में, और किसकी हुई? जिन्होंने पहले त्यागा था, प्राक प्राक मतलब पहले, पहले अपना घर छोड़े, और घर में भी किसको छोड़े? सुदुष्ट जिनको छोड़ना बहुत कठिन है, वैसे हृदय अभिजातस्य, अपने हृदय से उत्पन्न बच्चों को छोड़े थे वे। पूरा हृदय का अर्थ होता है संस्कार, अपने पुत्र में पिता का पूरा पूरा संस्कार जाता है, तो सभी लोगों का अनुभव है, उसका स्वर कंठ स्वर भी पिता जैसा होता है, उसकी आंखें, उसका सिर, उसके हाथ पांव, उसका स्वभाव, संस्कार सब कुछ पिता जैसा होता है। तो अगर आसक्ति होनी भी होगी अपने कर्म से, तो वहां होती उनकी, अपने पुत्र में होती, जो उनके ही एक दूसरे स्वरूप थे। और पहले कहा गया था कि कार्ष्णेन अनुरूपा, वो पूरा पूरा राजर्षि भरत के समान थे पांचों पुत्र, तो हृदय से उत्पन्न पुत्र को तो उन्होंने छोड़ दिया, कैसे वो पशु में आसक्त हो सकते थे अगर भगवान की इच्छा नहीं होती तो? देखिए उत्तर आ रहा, क्लियर उत्तर आया, तो पुत्र जो उत्पन्न होता है तो पिता का हृदय उसमें जाता है। वास्तविक बात है कि पिता के शरीर का समग्र अंश खून जो रक्त है वह बाद में बीज के रूप में होता है, और बीज में पिता का कर्म फल संस्कार आदि सब कुछ रहता है, सब कुछ उसमें रहता है, और वह बाद में आकार भी धारण कर लेता है, आकार भी पिता जैसा, और संस्कार विचार बोली सब कुछ होगा, ये तो देखी गई है बाद में। और स्त्री पुरुष के पति पत्नी के वो हृदय का मूर्तिमान रूप होता है वास्तव में पुत्र। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अगर अपने प्रारब्ध कर्म से आसक्ति होनी होती तो अपने इन पुत्रों में होती, कैसे जात्यंतर में एक पशु में कैसे आसक्ति हो सकती थी। अच्छा कोई कहे कि भाई हो सकती है पशु में, लेकिन कह रहे प्राक परित्यक्त दुस्तर हृदय हो जाता, उन्होंने पहले छोड़ा था और इसलिए छोड़ा था निःश्रेयस में प्रतिपक्ष समझ करके कि मैं अपने पुत्र में आसक्ति करूंगा, अपने पत्नी में आसक्ति करूंगा तो मैं श्रेय को नहीं प्राप्त कर पाऊंगा, उसके लिए उन्होंने छोड़ा था। तो इस तरह से छोड़ने वाले की आसक्ति पशु में कैसे हो सकती है। भक्ति के लिए उन्होंने छोड़ा था, वो घर पर भी भक्त थे, भक्ति बढ़ रही थी दिन पर दिन, लेकिन फिर भी उन्होंने विचार किया कि अब इन स्त्री पुत्रों को छोड़ करके, प्रजा को छोड़ करके एकांत में भगवान का भजन करेंगे। इस तरह से उन्होंने छोड़ा था जानबूझ करके निःश्रेयस। निःश्रेयस कहते हैं भक्ति को, भगवत प्रेम ये मुक्ति को। तो उसमें बाधक समझ करके प्राक परित्यक्त, पहले जिन्होंने छोड़ा था, और त्यक्त नहीं करे परित्यक्त, पूरा पूरा छोड़ा था। छोड़ने के बाद एक दिन सपने में भी वे अपनी पत्नी और पुत्रों को नहीं देखे थे, जागृत में सोचने की बात तो दूर रही, ऐसा छोड़ा था उन्होंने। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि महाराज भरत राज्य को, पत्नी को और बच्चों को, सुहृदों को वैसे छोड़े थे, वैसे त्यागे थे जैसे कोई व्यक्ति मल त्यागता है, और मल त्यागने के बाद वो फिर देखने नहीं जाता है कि वो सुरक्षित है कि नहीं, पता नहीं क्या होगा उसका, तो कभी भी नहीं। और मल त्यागने में उत्कंठा होती है, त्यागने के बाद आदमी प्रसन्न हो जाता है, तो त्यागने के बाद वे खुश हुए, आनंदित हुए, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे अपने पुत्रों के विषय में या अपनी पत्नी के विषय में, राज्य के विषय में। वे कैसे कैसे एक हरण में आसक्त हो सकते थे, मानुषेतर हरण में, इतरथा कथम असंग स्या, असंग माने आसक्ति, यदि भगवान की इच्छा नहीं हुई होती तो कैसे वे आसक्त हो सकते थे, किसी भी कारण से नहीं, किसी भी तरह आसक्त नहीं हो सकते। लेकिन भगवान कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति बढ़ाने के लिए कुछ भी उपाय कर सकते हैं। तो यह क्लियर हो गया कि राजर्षि भरत का जो यह पतन है, यह भगवान की इच्छा से उनकी भक्ति बढ़ाने के लिए हुआ और हम लोगों को सावधान करने के लिए। हम लोगों को अपना प्रारब्ध देखना चाहिए, कहीं अपराध न हो जाए, एक भी अपराध न हो जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपराध के अलावा और कुछ करते ही नहीं, उनके लिए क्या भगवान करे, अपराध के अलावा और कुछ होता ही नहीं। कहीं किसी के गुरु में दोष निकाल देना, ये पहला स्वभाव होता है अपराधी, है गुण लेकिन तुरंत दोष के रूप में उसको गाओ कहो, ये स्वभाव हो जाए। इस तरह सावधान रहना चाहिए। तो उन्हीं का तस्य एवं अंतराय विहत जोगारम्भ रस्य राजस्य भरतस्य तावन मृग मृगार्भक पोषण पालन प्रीणन लालन अनुसंगेण अभिगणित आत्मानम अहि रिवाको विलम दुरति क्रम काल करार्भव स आपद्यत। इस प्रकार राजर्षि भरत हरिण के पोषण पालन प्रीणन लालन में लगे हुए थे और आत्मानम अभिगणित अपने विषय में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। प्रत्येक मनुष्य को अपने विषय में जरूर विचार करना चाहिए कि मैं इसके बाद कहाँ जाऊंगा, मेरे जीवन का क्या स्वार्थ है। केवल स्त्री पुत्रों के पालन में ही नहीं रहना चाहिए, अपने विषय में विचार करना चाहिए। यहाँ लिखा गया है आत्मानम अविगण्यता, अपने को कुछ नहीं गिनते थे। गिनने का मतलब है जानना, महत्व तो रखना। अपने कल्याण के विषय में कभी नहीं सोचे, केवल हरिण के विषय में सोच रहे थे। और ऐसा सोचते सोचते वह कराल वेग वाला काल जो दुरतिक्रम है, जिसके वेग को रोक देना कठिन है, हजारों उपाय से भी काल को रोकना कठिन है, वह कराल वेग वाला काल पहुंच गए थे। मृत्यु का समय आ गया। जैसे अपने कार्य में असावधान चूहे के पास अकस्मात सांप आ जाता है, आंखों आंखों विलंब अहि इव, जो आंखों माने चूहा मुसिक, तो मुसिक असावधान रहता है, अभी इधर बिल खोदना है, अभी इधर एक फ्लैट बनाना है, अभी इधर एक बिजनेस खोलना है, अभी ये करना है वो करना है, तब तक भूख से जीभ लपलपाता हुआ सर्प पहुंच जाता है। और सर्प जब पहुंचता है तो मूस महाशय की योजनाओं पर विचार नहीं करता है कि थोड़ा एक दो बरस छोड़ दे, अभी अपना काम पूरा कर ले, उसको अपना भोजन चाहिए और तुरंत वह पकड़ करके खा जाए, पकड़ ले। इस तरह से काल आ गया, सबके जीवन में आएगा। हम लोगों का भी शरीर जा ही रहा है और एक दिन काल आकर के और समाप्त कर देगा। यह भागवत है, हमारे जीवन के साथ जो सत्य चिपका हुआ है उसको ये प्रकाशित करता है। यह अपना इतिहास वास्तव है। कृपया हमें क्षमा करेंगे, मैं कुछ समय आज ज्यादा लूंगा क्योंकि मैं इस अध्याय को पूरा करना चाहता हूं। तो ये सब प्रसंग विचारणीय, राजर्षि भरत के सामने ही कराल वेग वाला काल नहीं आ गया, हमारे सामने भी आएगा। उस समय हम किस मानसिकता में होंगे, क्या सोचेंगे, आंख से क्या देखेंगे, मन में क्या सोचेंगे, उसके अनुसार हमारी गति होगी। इधर काल आता है,
सहस्रों उपाय से काल का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, वह काल आ गया, मृत्यु का समय इनका आ गया। तदानी अपी अपी शब्द उस समय भी, अरे पहले जो भूल हुई तो हुई थी, अब तो सावधान इनको हो जाना चाहिए था, लेकिन तदानी अपी मृत्यु काले अपी, मृत्यु काल में भी उसी हरिण का चिंतन करना। ये तदानीम अपी सुखदेव गोस्वामी की भाषा देखिए, अगर जवानी में बेहोश रहे, घर का काम धंधा करे, तो कम से कम बुढ़ापा में मरने से पहले दो चार वर्ष सावधान हो जाए, लेकिन ये तो तदानीम अपी उस समय भी पार्श्ववर्तिनम आत्मजय अनुशोचन अभिवृक्ष मारा, उस समय भी वे हरिण को ही देख रहे थे, उनकी आंखें हरिण को देखने में लगी, अभिवृक्ष मारा, वृक्ष मारा मैंने देख रहे थे खूब अच्छी तरह से, उसके नख से लेकर कान तक मुंह तक सब देख रहे थे वो सब उसी पर देख रहे थे। तो वो भी उस समय ऐसे पास में बैठा था, पार्श्ववर्तिनम पास में ही वर्तन कर रहा था, बैठा था, और आत्मजय लीव अनुशोचनतम, जैसे कोई पुत्र हो और अपने पिता की मृत्यु के समय वो शोक करे कि हाय हमारा पालन करने वाले हमारे पिताजी बोल नहीं रहे हैं, उठ नहीं रहे हैं, इनका अन्न छूट गया है, तो उसे अगर ऐसा आभास हो जाए पुत्र को कि हमारे पिताजी का परलोक होने वाला है और उनकी मृत्यु होने वाली है, तो पुत्र जैसे शोक में डूब जाएगा, उस तरह से वो शोक कर रहा था, हरिण भी शोक कर रहा था, क्योंकि अब उसको वो सलाह नहीं रहे थे, उस तरह से प्यार नहीं कर रहे थे, शरीर शिथिल हो चुका था, तो वो भी शोक कर रहा था। आत्मजम अनुशोचनतम, जैसे पुत्र शोक करता है पिता के लिए, वैसे वो हरिण भी, वो भी माया फैला रहा था उसको अगर दूर चला गया होता तो फिर ही तो ये विकल होते हैं, लेकिन वही पास में बैठा था मरण समय में, तो उसको देख रहे थे, आंखें लगी थी हरिण पर। और मृगे एवं अभिनिवेशित मना, और मन भी मृग नहीं अभिनिवेशित था, एवं शब्द लगा रहे, तस्मिन मृगे एवं न अन्यत्र, और कहीं मन नहीं इनका था मरते समय, कृष्ण में तो अब सपने में भी नहीं था, और कहीं नहीं, न पुत्र में, न स्त्री में, न कृष्ण में, कहीं मन नहीं था, एवं शब्द लगा रहे, मृगे एवं अभिनिवेशित मना, मन कृष्ण में, मन मृग में अभिनिविष्ट था, आंखें मृग में लगी हुई थी, इसलिए मृगेण सह इमं लोकम विसृज्य, मृत्यु आई तो मृग तो छूटा है, लेकिन मृग के साथ मृगेण सह इमं लोकम, यह देह विसृज्य, देह भी छूटा और मृग भी छूटा, अब गए, चलो छूटेगा देह भी, और जिसके बारे में हम सोच रहे हैं वो भी छूटेगा, है ना। मरते समय मनुष्य जिन विषयों का चिंतन करता है वो विषय भी यही रह जाएंगे, बंबई का एक एक घर और व्यक्ति यही रह जाएगा, और देह भी यही रह जाएगा, इसीलिए कहते हैं मृगेण सह मृग के साथ इमं लोकम विसृज्य, यह देह छोड़ करके चले गए, कहां चले गए, मृग शरीरम अवाप, ये वाक्य बता रहा है, मृग के साथ इस देह को यही छोड़ करके मृग शरीर ग्रहण किए, क्योंकि भगवान ने नियम बनाया है, जमजम वापि स्मरण भावम तजम तंते कलेवरम तम तमय वैति कौंते वसदा तद्भाव भाव। आंखें भी लगी हैं और मन भी लगा है और पूरा पूरा अभिनिवेश, केवल स्मरण नहीं हो रहा है, अभिनिवेश पूरा गाढ़ चिंतन हो रहा है। हाँ, अब इसको कौन पालेगा पोसेगा, मैं तो जा रहा हूँ ये वो, तो तुम जा रहे हो तो तुम अपने विषय में सोचो। हम लोग ऐसे देखे हैं, जब बूढ़े लोग मरने लगते हैं तो मरते समय वे घर के लोगों को और स्वजनों को बुलाते हैं और कहते हैं कि प्रेम रखना, मिलजुल कर रहना, हमारे घर के बच्चों को देखते रहना, अब तो मैं जा रहा। ये पूछा जाए कहाँ जा रहे हैं तो उनको अपने आरक्षण का पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। कन्फर्म है, वो कन्फर्म है, लेकिन पता नहीं है कि किस दिशा में जा रहे हैं, कौन गाड़ी पकड़े। जिनको छोड़ रहे हैं उनकी चिंता करते हैं और जहां जाना है उसकी कोई चिंता नहीं। ये पागलपन देखिए। हम उदाहरण दिया करते हैं, जैसे ट्रेन के डिब्बा में कोई आदमी हो और अब उसका स्टेशन आने वाला हो उतरने का, तो वो यात्रियों से, डिब्बा में बैठे हुए यात्रियों से कहे कि आप लोग प्रेम से रहिएगा, झगड़ा मत कीजिएगा, आनंद से रहिएगा, अब तो मैं जा रहा हूं। तो कोई पूछे कि कहां, तो पता नहीं कहां, लेकिन अब मैं जा रहा हूं। रेल के चक्का के नीचे जा रहे हो कि कहां जा रहे हो, तो कुछ तो पता होना चाहिए कि जा रहे हो। पर ऐसा कोई पागल व्यक्ति हो जो डिब्बा में लोगों से कहे कि मैं जा रहा हूं और वास्तव में उसको पता न हो कि कहाँ जाना है, कब उतरना है, 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही है उस समय उतरना है कि कहाँ, कब उतरना है, कहाँ उतरना है, तो वो तो बिल्कुल पागल है। इस तरह से हम लोग पागल हैं वास्तव में। जाने से पहले हम लोगों को अपना डेस्टिनेशन जान लेना चाहिए कि हमें यहाँ जाना है। ऐसे भगवान को सब पता है कि कहाँ जाएंगे। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्व स्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुणवृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तामस। भगवान को सब पता है, लेकिन बेटर होता कि हमको पता लग जाता। अगर पता लग जाए कि हम नरक जाने वाले हैं तो किसी तरह आरक्षण कंसिल कराएं, कोई उपाय करेंगे, अभी माला जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। लेकिन जो भी हो, हम शास्त्र द्वारा जान सकते हैं कि हम कहाँ जाएंगे। यदि पता लगाना चाहे तो लगा लेंगे तुरंत अपने वर्तमान आचरण से। राजर्षि भरत अंत में हरिण का चिंतन करते हुए मरे, देखते हुए इसलिए मृग शरीरम अवाप। लेकिन एक शब्द सुखदेव गोस्वामी दे रहे हैं कि मृतम कलेवरम अनु न मृत जन्मानुस्मृति इतरवत। ये स्पेशल बात है, इतरवत, इतर मतलब अन्य लोगों की तरह, कर्मी की तरह। चूंकि ये भगवान के प्रेमी थे, भक्त थे, इसलिए इतरवत साधारण व्यक्ति की तरह मृतम कलेवर मनु, शरीर छूटने के बाद, शरीर मरने के बाद मृत जन्मानुस्मृति न, इनके पूर्व जन्म की स्मृति नहीं मरी, पूरी स्मृति रह गई मृग शरीर में। शरीर चला गया लेकिन पूर्व शरीर का पूरा पूरा स्मरण मृग शरीर में बना रहा। ये देखिए भगवान की इच्छा। अगर इनका प्रारब्ध कर्म होता तो मृग शरीर में यह स्मृति नहीं रहती, और साधारण स्मृति नहीं, भगवत भक्ति विषय की स्मृति बनी रही कि मैं इस तरह राजर्षि भरत था, मैं घर द्वार छोड़ा, मैं भगवान की भक्ति किया, मैं इतना उन्नत था, लेकिन उस तरह जप कर रहा था, हरिणी आई और इस तरह से मैं गिर गया। और यह सोचते हैं इनके हृदय में बहुत पश्चाताप होने लगा, हृदय जलने लगा, हाय हाय मैं कितना ऊंचा स्तर से गिर गया। ये प्राय अमृत शरीर में विलाप करते रहते थे, रोते रहते थे, पूरी स्मृति थी। तो जैसे दूसरे लोग पूर्व जन्म की याद पूर्णतः भूल जाते हैं, उस तरह से भूले नहीं भगवान की कृपा से। मृत जन्मानुस्मृति न मृत जन्मानुस्मृति, जन्म की स्मृति न मृत, मरी नहीं। हम लोग दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे तो इस शरीर की स्मृति पूरी नष्ट हो जाएगी, शरीर छूटते ही सब स्मृति समाप्त हो जाती है। अरे शरीर छूटने पर तो दूर बात है, जब हम लोग गाढ़ सो जाते हैं निद्रा में उस समय भी सब स्मृति खत्म हो जाती है, प्रतिदिन भूलते हैं। और बल्कि इसको भूला जाए तो कुछ आराम मिलता है। जब भूलते हैं तब तो आराम मिलता है, दिन में सोचते हैं, याद करते हैं तो जलन होती है। इस तरह से